أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ایک ایسے موضوع پر گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے جو اتنا کثیر الجہت ہے، ہر شخص کے اعتبار سے اتنا الگ الگ اس موضوع پر بولنے کا مواد موجود ہے کہ اس کو ایک یا دو نشستوں کے اندر سنبھالنا بہت مشکل ہے، اور تقریباً کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اس غصے اور غضب کی ایک اخلاقی برائی جو جب حد سے تجاوز ہو جاتی ہے اس میں مبتلا نہ ہو. تو دیکھیے، اس کے متعلق کہا جاتا ہے، غصے کے متعلق، کہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو تنہا آتا ہے لیکن اپنے ساتھ جاتے جاتے عقل کو ساتھ لے جاتا ہے، اخلاق کو ساتھ لے جاتا ہے، شخصیت کی سب خوبصورتی کو ساتھ لے جاتا ہے. یعنی غصہ کیا ہے؟ علماء نے اور جو دانشور ہیں انہوں نے بہت اچھی اس سلسلے میں بات کہی ہے کہ دوسروں کی غلطی کی سزا خود کو دینا یہ غصہ کہلاتا ہے. یعنی غصہ آپ کو کسی دوسرے کی بات پر آتا ہے لیکن اس کی سب سے پہلی سزا آپ خود کو دیتے ہیں. جب بھی کہا جاتا ہے غصہ ماچس کی تیلی کی طرح سے ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل جاتی، اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے غصے کے متعلق کہ بندہ یا کوئی شخص اتنا غصہ نہیں کھاتا ہے جتنا غصہ اس کو کھا جاتا ہے. اور جب یہ روایات میں ہمارے پیغمبر اکرم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غصہ مت کرو کہ وہ غصہ تباہ کر دینے والا، انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور بہت سے لوگ یہ بھی یہاں تک کہتے ہیں کہ غصہ آنا مرد ہونے کی نشانی ہے اور غصے کو پی جانا شادی شدہ ہونے کی نشانی ہے. بہرحال آج کل لوگوں میں قوت برداشت کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، بہت ہی جلد غصہ لوگوں کو آ جاتا ہے، اور اعداد و شمار کے اعتبار سے پاکستان بہت زیادہ غصہ کرنے والے ممالک میں 10ویں نمبر پر آتا ہے. تو جب بھی یہ بات بھی روایات میں بھی آئی ہے کہ جب انسان شدید غصے کے عالم میں ہوتا ہے تو شیطان اس سے اس طرح سے کھیلتا ہے جس طرح بچے گیند سے کھیلتے ہیں. شیطان رگو خون کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے، اور واقعتاً کبھی آپ دیکھیں کوئی شدید غصے میں، کبھی آپ اپنی تصویر کھینچ کے دیکھیں، اپنی آپ سیلفی لے کر دیکھیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی ایک عجیب سی شخصیت، آپ کی شکل تبدیل ہو چکے گی، آپ کو اپنی شخصیت کے اندر بہت تبدیلی نظر آئے گی. یہی وجہ ہے کہ غصہ آپ کی ظاہری اور باطنی دونوں شخصیات کو خراب کر دیتا ہے. ایک بیٹا تھا ایک باپ کا، بہت ہی غصیلا تھا. باپ کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں کہ غصہ تمہاری شخصیت کو کتنا خراب کر رہا. باپ نے ایک دفعہ بیٹے سے کہا کہ بیٹا جتنی مرضی چاہے غصہ کرو اور جتنا چاہے چیخو، بس تم میری ایک بات مان لو کہ جب بھی غصہ آئے یا چیخو دیوار میں ایک کیل جو ہے ٹھوک دیا کرو. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے. پہلے دن جو ہے وہ 35-40 کیلے ٹھوک دی، بہت ہی حیران شرمندہ ہوا. اگلے دن جو ہے وہ پھر غصہ آیا، 20-25 مرتبہ 25 کیلے ٹھوک دی. اس کے بعد اگلا دن آیا، بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی، اگلی دفعہ 15 ہو گئی. پھر دو ایک ہفتے بعد یہاں تک کہ کوئی کیل نہیں ٹھوکی، تو اور یہاں تک کہ پوری دیوار تقریباً کیلوں سے ڈھک گئی. تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا اس غصہ کرنے کے نتیجے میں تمہیں کیا فرق پڑا، یعنی جب تم اگر غصہ ہی نہیں کرتے تو کیا کوئی فرق پڑتا؟ بیٹے نے کہا بابا کوئی فرق بھی نہیں پڑا، اور مجھے واقعی بڑی شرمندگی ہے کہ اگر میں یہ غصہ نہ کرتا تو اتنا ضرور فرق پڑ جاتا کہ میری شخصیت جو ہے وہ بہتر رہتی. اچھا، حالات تو اس غصہ کرنے کی وجہ سے مزید خراب ہوتے چلے گئے. باپ نے کہا بیٹا कि देखो ये 100 से ज्यादा कीलें जो है यहां पर लगी हुई हैं। अब तुम एक दूसरा काम ये करो, अब भी जब कभी दोबारा गुस्सा आए तो उस गुस्से को पी लो और हर बात के गुस्से के बदले एक कील दीवार से निकाल लो जो तुमने ठोकी हुई है। अच्छा, 3-4 हफ्ते इसी तरह से गुजर गए, यहां तक कि सब कीलें निकल गई। अच्छा, उसके बाद जाकर बाप ने वो दीवार दिखाई कि बेटा देखो किस कदर ये दीवार बदनुमा और बदसूरत लग रही, इस तरह के बेशुमार उसके अंदर कीलें अगर जो आप ठोकी हुई और उसके बाद वहां से आप निकाले। तो बाप ने समझाया कि बेटा शैतान इस तरह से तुम्हारी शख्सियत को दागदार बना देता है, ये सुराख इस तरह तुम गुस्सा करके दूसरों के दिलों को जो छलनी करते हो उनके दिलों में सुराख करते हो, उसके बाद वो दिल कभी भी तुम्हारी तरफ से साफ नहीं होते, यानी तुम्हारी शख्सियत भी इस दीवार की तरह से खराब लगती है और उन अफराद के दिल भी इसी तरह से छलनी होते हैं जो तुम्हारी तरफ से बाद में कभी साफ नहीं होते। मुमकिन ये है बहुत ज्यादा कि वो इसका इजहार ना करें, लेकिन बहरहाल दिल साफ होना बहुत मुश्किल काम होता है। और उसके बाद बेटे ने भी इस बात को रियलाइज किया कि काश ये दीवार खराब होनी ही ना हुई होती और मेरी शख्सियत इस तरह से खराब ना हुई होती। देखिए, एक चीज कही जाती है कि गुस्सा जो है वो पागल होता है, कहा जाता है कि गुस्सा पागल है, जबकि ऐसा हरगिज भी नहीं। गुस्सा बहुत चालाक है, गुस्सा बहुत अय्यार है, ये हमेशा अपने से कमजोर के ऊपर आता है, हमेशा अपने से कमजोर पर। अच्छा, मसलन वो दामाद जो आज मसलन सुसर के सामने बहुत चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, यही सुसर अगर कोई बहुत बड़ा बदमाश हो मसलन और उसके हाथ में गन हो, पुलिस और या फौज का बहुत कोई आला अफसर हो, आईजी साहब हो, ब्रिगेडियर साहब हो, जनरल साहब हो कोई, तो ये दामाद बहुत ही अच्छा बच्चा बन के रहता है और फिर ये कभी गुस्सा नहीं करता। अब ये देखता है कि इसकी बीवी के आगे पीछे दिफा करने वाले नहीं है या वो कमजोर हैसियत के हामिल हैं, गरीब हैं, बासर नहीं है, तो ये क्या करता है, जुल्म ढाता चला जाता है। यानी मैं एक माशरे में एक तबके की मिसाल दे रहा हूं, तो माशरे में कमजोर माली हैसियत वालों का जो दामाद है उसका वो चालाक गुस्सा फौरन निकल कर बाहर आ जाता है। जब भी कहा जाता है ना कमजोर पर गुस्सा अगर आपको आए तो आप खुद पर काबू पाए, और ताकतवर पर अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप बगैर कोशिश के ही अपने ऊपर काबू पा लेंगे। तो देखने में भी ये चीज आती है कि बच्चों पे भी ऐसे अफराद जो है बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, और आमतौर पर घरों के अंदर जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए अफराद नजर आते हैं, इनकी शख्सियत का एक पहलू आप और देखेंगे कि ये बाहर वालों के लिए बड़े खुश अखलाक होते हैं, बाहर वालों के सामने काफी म्याऊं म्याऊं कर रहे होते हैं। तो यही वजह है कि ये गुस्सा पागल नहीं है, ये गुस्सा बड़ा आकिल है, ये हमेशा अपने से कमजोर पर आता है। और अलबत्ता ये जरूर है कि इंसान के गुस्से में उसकी अकल मुतासिर हो जाती है, यही वजह है कि हमारे हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ये जुमला इरशाद फरमाते हैं कि गुस्से से बचो क्योंकि इसकी इब्तदा जुनून से होती है और इंतहा जो है पशेमानी और नदामत पे होती है, इससे बचो हमेशा। और यही वजह है कि हमारे पैगंबर अकरम फातिमी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला इरशाद फरमाते हैं कि गुस्सा ईमान को इस तरह से फासिद कर देता है जिस तरीके से सिरका शहद को फासिद कर देता है। और बाज जगहों के ऊपर तो ये बात भी आई है कि जिस तरह एलवा जो है वो जो खास किस्म का एक इंतहाई जहरीला पौधा है, तो उसको अगर आप किसी शहद वगैरह के अंदर भी डाल दें तो उसके ऊपर भी इसकी कड़वाहट शहद के ऊपर भी गालिब आ जाती है। अच्छा, अलबत्ता आगे चल के हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे, कभी गुस्सा जो है वो ममदू भी होता है, कभी गुस्सा करना जरूरी भी हो जाता है, लेकिन उसकी क्या शराइत होती हैं, किस तरह से ये इसका तरीक़ेकार होता है वो भी आगे चलकर आएगा। यानी गुस्सा कभी कभार पसंदीदा भी होता है। ایسا نہیں ہے کسی کو غصہ ہی نہ آئے. ایک جملہ ویسے ہی مشہور ہے, پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے, کہ صرف گدھے کو غصہ نہیں آتا ہے. یعنی مقصد ہے کہ غصہ تو آئے گا اب, لیکن اس غصے کو پی جانا یہ اصل چیز ہے. کیونکہ غصے, یعنی کہا جاتا ہے نا کہ غیرت بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. جبھی اس کو غصے کو ختم کرنے کو نہیں کہا گیا, ایسا نہیں کہ کہا جائے کہ بھائی غصے کو بالکل ختم کر دیا جائے, ڈھا دیا جائے, ایسا نہیں, بلکہ غصے کا رخ موڑنے کا حکم جو ہے وہ آتا ہے. اچھا, اب غصے, غصہ کرنے کے کچھ نقصانات بھی. پہلے ہم ظاہر ہے کہ اس چیز کو اس بات کے اعتبار سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کے کتنے تباہ کن نتائج سامنے آ سکتے ہیں, اس کے اثرات کون سے ہو سکتے ہیں, اور پھر جب ان چیزوں کو آپ خود سمجھ لیں گے کہ کتنا خطرناک ہے, تو ظاہر ہے پھر انسان اس سے بچنے کی بھی کوشش کرے گا. پھر اس کے بعد اگلی جو ہماری نشست ہوگی, اس کے اندر ہم وہ طریقہ کار بیان کریں گے کہ جب انسان کو غصہ ہے تو اپنے اوپر کنٹرول کیسے پائے, اور بالکل پریکٹیکل طریقے ہوں گے. دیکھیے, غصہ ایک ایسی چیز ہے, اس کے جو نقصانات ہیں کہ یہ بے شمار گناہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. غصہ پورا ایک پیکیج ہے, اس کی چھتری تلے بے شمار گناہ. مثلا ہم چند ایک باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں. غصہ صرف اکیلا نہیں, مثلا آپ کو غصہ آ گیا, نہیں, اس کے ساتھ جناب بد کلامی ہوتی, ایسے ایسے الفاظ اس کے اندر کہے جاتے ہیں, ایسے ایسے جملے اس کے اندر بولے جاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہوتا ہے. اس میں انسان اپنی آواز کو بہت بلند کرتا. ایک دفعہ بہت پہلے ہم نے اپنے ایک درس میں آیت اللہ فاطمی نیا کی گفتگو, ان کا ایک جملہ بیان کیا تھا کہ وہ گھر جس میں چیخنا چلانا یہ سب بہت زیادہ ہوتا ہے, وہاں سے پھر فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شیاطین وہاں پر بسیرا کر لیتے ہیں, اور انسان اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو بہت بلند کر رہا ہوتا ہے. روایت میں کس قدر اب ہم اس طرف نہ چلے جائیں کہیں, بہرحال اشارہ کرتے ہوئے گزرتے ہیں کہ بہرحال ماں باپ کے سامنے اگر کوئی شخص اپنی بہت آواز کو بلند کرے تو اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں کی جاتی. یعنی صرف آواز کو بلند اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو کتنا ایک تو نقصان یہ کہ فرشتے وہاں سے جا رہے ہیں, شیاطین وہاں پر بسیرا کر رہے ہیں اس گھر کے اندر, اور والدین یا بزرگوں کے سامنے اس طرح سے آواز بلند کی جا رہی ہے تو عبادتیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں. غصے کا جو پیکیج ہے اس میں چیخنا چلانا ہوتا ہے. اچھا دیکھیے, کہا یہ جاتا ہے کہ بچے بھی بہت جب کھیل کھیل میں بھی چیختے چلاتے ہیں, آپس میں کھیلتے وقت اور لڑتے وقت بھی چلاتے ہیں, لیکن بچے اس قدر شور نہیں کرتے جتنا ان کو چپ کرانے کے لیے مائیں شور کرتی ہیں. باقاعدہ ایک اس متعلق ایک تحقیق ہوئی ہے, یعنی بچوں کے شور کو کم کروانے کے لیے مائیں جتنا چیختی ہیں اور ان سے زیادہ شور مچاتی ہیں, اس میں بچے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. تو عموماً گھروں کے اندر اس طرح سے آوازیں جو ہیں آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ انسان ظاہر چیختا جو چلاتا ہے وہ غصے میں چیختا چلاتا ہے. بالکل اگر کوئی کول اینڈ کام بیٹھا ہو تو اس کو چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آگے جب معاملہ بڑھتا ہے تو اس میں گالیاں تک دی جاتی ہیں. اب ظاہر ہے گالیوں کی مثالیں تو نہیں دی جا سکتی یہاں پر, بہرحال گالیاں دی جاتی ہیں. وہ خود ایک کتنا بڑا گناہ, اور کچھ جو ذرا سافٹ قسم کی گالیاں جو بچوں کو عام طور پر دی جاتی ہیں وہ بھی ایک لحاظ سے, مثلا بدبخت کہنا, کمبخت کہنا, یعنی یہ خود ایک بددعایا کلمات ہیں, یہ بھی زمانوں کے اوپر نہیں آنے چاہیے. اور جو اس کے بعد اور جو بڑی بڑی گالیاں ہیں ان کے تو اگر اسی کے ہم صرف عواقب بیان کریں تو پوری گفتگو اسی کے اوپر ہو جائے گی. تو نقصانات کے اندر کیا آتا ہے, غصے میں انسان گالی دیتا ہے, غصے میں انسان طنز کرتا ہے, تانے دیتا ہے. مومن کو پہ طنز کرنا, مومن پر تانے دینا, اس پہ پوری گفتگو ہو سکتی ہے. اتنی احادیث بیان کی جا سکتی ہیں کہ آدمی حیران ہو جائے کہ ہمارے صرف اتنے سے چھوٹے سے طنز اور تانے کے اوپر اتنا زیادہ گناہ ہے اس کا. نہیں, مومن کو طنز اور طنز نہیں کیا جا سکتا, اس کو تانے نہیں دیا جا سکتے, لیکن یہ بھی غصے کے پیکیج میں ہوتا ہے. برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے, وہ ہے نا کہ وہ جو ابھی آپ نے سنا برا بھلا سن, ظاہر ہے کہ کسی کو کہا جائے گا اس کے دل میں سوراخ ہوتے چلے جائیں گے, پھر اس کے بھی دل میں کینہ اور برائی آپ کی بیٹھتی چلی جائے گی. یعنی آپ کے بھی دل میں اس کی برائی بیٹھے گی, اور اس جس کو آپ جس پر اپنا غصہ نکال رہے ہیں اس کے دل میں بھی آپ کی برائی بیٹھتی چلی جائے گی. اور مومن سے کینہ رکھنا, مومن سے اس انداز کی دشمنی کرنا, یہ خود کتنا ایک حرام اور ایک کتنا بڑا گناہ ہے. اسی پہ اگر احادیث پیش کی جائیں तो आदमी हैरान रह जाएगा, अच्छा सिर्फ सिर्फ दिल में कीना सिर्फ रखना है, यानी हम किसी से कुछ कह भी नहीं रहे, कुछ कर भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी उसकी बुराई दिल के अंदर बैठती चली जा रही है। ये कीना तोजी, ये खुद एक बहुत बड़ी अखलाकी बुराई, ये खुद उसी की छतरी के नीचे है, गुस्से के अंदर। और इंसान का वाकईतन अगर दिल साफ ना हो, कितने लोग ऐसे हैं कि माशरे के अंदर इबादत वगैरह करते नजर आते हैं, कितने लोग हैं, लेकिन क्या कहा होता है कि लेकिन अगर दिल साफ नहीं, तो कहा जाता है कि माथों पर सजदों की मेहराब नहीं बनती, फकत दाग पड़ता, इससे इतना ज्यादा फायदा उनको नहीं होता। ठीक है, वाजिबात की हद तक वाजिबात उनके उतर रहे हैं, लेकिन जो और मुस्तहबात या इबादत की तरफ जो वो लोग जो अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन दिल में वही कीने, वही हसद, वही दूसरे के खिलाफ बुराइयां, वही गीबतें, वही चीखना चिल्लाना और एक दूसरे को बुरा भला कहना, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ माथे पर सजदे का मेहराब नहीं पड़ा, सिर्फ दाग एक लग गया। अच्छा, इसी की छतरी के नीचे सूए जन भी आता, सूए जन बदगुमानियां उसके नीचे पलती, जिस पर भी आप गुस्सा करते हैं वो आपसे हमेशा के लिए बदजन हो जाता। इसी तरीके से गुस्सा का एक नतीजा कतअ रहमी की सूरत में निकलता, कतअ रहमी, रिश्तेदारों से ताल्लुकात कतअ हो जाते हैं, गुस्से में लड़ाई झगड़े होते हैं, ताल्लुकात हमेशा के लिए कट जाते हैं। और खुद उस कतअ रहमी का कितना किस कदर नुकसान है कि उम्रें कम हो जाती हैं, इंसान मुसीबतों और बलाओं के अंदर गिरफ्तार हो जाता है। और रिवायात के अंदर भी ये बात आई है कि नस्लें मुनक़ता हो जाती, वो तनकल्लानर रहम, नस्लें मुनक़ता हो जाती। तो कतअ रहमी के किस कदर नुकसान हैं, वो भी इसी गुस्से के अंदर आती है चीज। अच्छा, गुस्से के नतीजे में फिर क्या होता है, जब गुस्सा ज्यादा पड़ता है तो कभी कभार हाथापाई हो जाती, मारपीट की नौबत आती। और एक चीज कभी हमने माशरे के अंदर देखी नहीं कि अगर मारपीट हो भी जाए तो क्या होता है कि कभी दियत देना पड़ती है, कभी जमान देना पड़ता है। जिस्मानी नुकसान किया है तो दियत देना पड़ेगी, मसलन कोई चीज जिस्म को उसने इस तरह से किया कि खून निकल आया, जिस्म का कोई चीज छिल गई, चेहरे के ऊपर अगर ऐसा किया है, थप्पड़ वगैरह मारा है, वो सुर्ख हो गया है, तो अलग किस्म की दियत है। जिस्म के और दीगर हिस्सों के ऊपर अगर इस तरह से कोई निशान पड़ा है तो उसकी दियत अलग है, खून निकल आया तो अलग है, हड्डी वड्डी टूट गई तो अलग है। बहुत इसके एक अलग तफसील है जो आज तक माशरे में देखा नहीं जाता है कि बस लोग बहुत हुआ तो मामूली सी एक दूसरे से बस एक्सक्यूज वगैरह कर लेते हैं, लेकिन दियत देते नहीं नजर आते हैं, ना उसके ऊपर किसी को इसका ख्याल होता है। अच्छा, और जो कोई अगर माली नुकसान किया है, मसलन गुस्से में कोई चीज तोड़ दी है किसी की, अब उसका जमान देना पड़ता, यानी दियत जिस्मानी नुकसान के बदले होती है, जमान माली नुकसान के बदले होता है। तो दियत और जमान ये भी चीज होती है, और ये नहीं इंसान दे तो ये मकरूज रहेगा, ताकि अगर मर गया तो उसके माल से निकालकर मीरास बाद में तकसीम होगी, पहले ये सब चीजें निकालकर दी जाएंगी। ये भी किसी को आज तक हमने अदा करते नहीं देखा है। इसी तरह मसलन गीबतें, तोहमतें, इल्जामात का चैप्टर खुल जाता है, यानी किसी पे भी आप गुस्सा करते हैं तो वो आपकी गीबतें करता है, आप उसकी गीबतें करते हैं, वो आपके तोहमतें लगाता है, आप उस पर तोहमतें लगाते हैं। इल्जाम एक शैतानी, एक पिंडोरा बॉक्स खुल जाता है। तो ये भी उसी गुस्से की इब्तदा, इन तमाम गुनाहों की इब्तदा उसी गुस्से से होती है। इसी तरह मसलन चुगलखोरी का गुनाह, उसकी कोई बुराई आपको पता चल गई, इधर से उधर आप बात लगा रहे हैं उस शख्स की दूसरे से लड़ाई करवाने के लिए, बहुत सारे इस तरह की चीजें वो भी इसी के अंदर आती हैं। झूठ का भी इंसान सहारा लेता है, यानी अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा कर उसके मुतालिक बातें करना, ये भी उसी के अंदर आता है। झूठ के खुद देखिए अपने के कितने ज्यादा इसमें गुनाह बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरह किसी भी मोमिन की मसलन आबरू रेजी या बेइज्जती वगैरह करना, लोगों के सामने उसको बेइज्जत करना, या मसलन उसका तमस्खुर उड़ाना, इन सब के लिए अगर अलग अलग अहादीस के अंदर जो इनके अजाब बताए गए हैं और इनके जो नुकसान बताए गए हैं, ये पूरा पैकेज तो आप देखेंगे कि तो सब कुछ गुस्से के अंदर ही आ रहा है। यहां तक कि इतना मामला बाज़ोकात ऐसी गुस्से के नतीजे में बातें बात आगे बढ़ जाती हैं कि तलाकों तक की नौबत आ जाती है, और ये छोटी छोटी बातों पर इस तरह से इतना इसको बढ़ाते हुए आगे ले जाना कि वो तलाकों तक नौबत आ जाए। तो ये बात याद रख लीजिए, तलाकों की जो के बाद की जो जिंदगी है, ये देखा गया है उस पुरानी जिंदगी से कहीं ज्यादा खराब साबित होती। کہیں زیادہ خراب. تو ابھی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جناب کوئی بات نہیں, اس تمام چیزوں سے جھنجھٹ سے تو ہمارا لڑائی جھگڑے سے جان چھوٹے گا, اس سے بڑی خرابیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں جو کہ بالکل ایک الگ چیپٹر ہے. کہ اس کی بات کی زندگی بلکہ اس سے پہلے والی زندگی آپ کو زیادہ بہتر لگے گی, چاہے اس کے اندر کچھ لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے لیکن اپنا اگر صرف زاویہ نگاہ بدل لیتے, ان لڑائی جھگڑوں سے پیچھا اپنا چھڑا لیتے, اپنے غصے پر قابو پاتے تو اس تک نوبت بھی نہ آتی. اچھا, بیوی عام طور پر اپنے شوہروں پر بڑا غصہ نکالتی, کتنا بھی بلکہ بات کہی جاتی ہے نا کہ تمام جنگل کے جانور شیر سے ڈرتے ہیں, اور شیر کس سے ڈرتا ہے؟ وہ شیرنی سے ڈرتا ہے. تو ابتدا میں تو نئی نئی شادی ہوتی ہے, آدمی بڑا شیر بنا ہوا ہوتا ہے, لیکن کچھ عرصے بعد ہی بہرحال بیوی اس کے اوپر غصہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور چند دن بعد شوہر بیچارہ بالکل ہی مغلوب ہو جاتا ہے. تو بیویاں اگر اپنے شوہروں کے اوپر غصہ کریں گی تو یہ بات یاد رکھ لیں, اس کا ایک بڑا آگے چل کر ایک نقصان ہوتا ہے. عام طور پر گھروں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بیویاں شوہروں پر چیخ رہی ہیں, چلا رہی ہیں, شوہر کے اوپر غصہ کر رہی ہیں, وہ بیچارہ اسی شیر کی طرح سے گردن جھکا کے کھڑا ہوتا ہے یا برداشت کر رہا ہوتا ہے. بعض اسے گھروں میں الٹا بھی ہوتا ہے معاملہ, لیکن چلیں ابھی بیویوں کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیے, بیویاں جو اپنے شوہروں پر اس طرح سے اولاد کے سامنے غصہ کر رہی ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اولاد پر باپ کا اثر اور روب و دبدبا کم ہو جاتا ہے, کم ہونے لگتا ہے. اچھا, ماں کی چند دن کی چودراہٹ کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتی ہے. جیسے جیسے بچے جوان ہوتے جاتے ہیں وہ ماں کے روب کے اثر سے نکلتے چلے جاتے ہیں. باپ کا روب اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا, یعنی باپ اگر روبداب ہے تو اولاد کے جوان ہونے کے بعد بھی اس کا روب باقی رہتا ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ اپنے شوہر پر اس طرح سے چیخ چلا کر اولاد کی نگاہ میں باپ کا روب و دبدبہ اس ماں نے پہلے ختم کر دی. اب اولاد ایک آزاد ہو جاتی ہے, باپ کے اثر سے بھی نکل گئی, ماں کے اثر سے بھی جوان ہونے کے بعد نکل گئی. اب کیا ہوتا ہے کہ کفے افسوس میں ہاتھ ملتے رہ جاتے. تو وہ مائیں جو باپ کا روب ان کی اولادوں پر کم کرتی ہیں, وہ اولادیں زیادہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں. تو خود غصہ کرنے والے کا اپنا بھی وقار اور روب و دبدبہ بھی متاثر ہوتا ہے. یعنی آپ بہت زیادہ جب آپ غصہ کریں گے, بار بار اولاد کے اوپر غصہ کریں گے تو کیا ہوگا کہ بچہ بھی اگر ہے یا جوان بھی اگر ہے تو وہ پلٹ کے آپ کو جواب دینے لگے گا, اور دو تین چار دفعہ وہ دیکھے گا تو آپ کے بھی غصہ کرنے پہ وہ بھی جواباً آپ پر غصہ کرے گا. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ خود آپ کا اپنا وقار اور روب و دبدبہ متاثر ہوگا. یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ آپ کے ہاتھوں اپنی ہی عزت جو ہے وہ داغدار ہونے لگتی ہے اور خراب ہونے لگتی ہے, اور صرف بچے نہیں بلکہ آپ کے ماتحت بھی, وہ بھی ایک دن آپ سے اس کے ساتھ زبان چلانے لگتے ہیں. یعنی اگر آپ ان کے اوپر بار بار غصہ کرتے رہیں, وہ بار بار غصہ کرتے رہیں تو پلٹ کے وہ بھی آپ کو جواب دینے لگیں. جب آپ کا ماتحت بھی آپ کو اس طرح سے جواب دینے لگے گا تو آپ کی اپنی عزت خراب ہوگی. تو اچھا, جو وسیلہ ہوتا ہے اس سے پھر دوسرے لوگ حسد بھی کرنے لگتے ہیں. اسے کوئی نعمت ملے تو اس سے خوش نہیں ہوتے, اس کے لیے زوال نعمت کی تمنا کرتے ہیں. اور اگر والدین اس طرح کے بد مزاج ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اولادیں ان سے دور ہونے لگتی ہیں, اولادیں دور ہونے لگتی ہیں, ان کو چھوڑ بھی بیٹھتی ہیں بعض اوقات. تو بد مزاج والدین جو ہوں یا بہت زیادہ غصہ کرنے والے, ان کے ساتھ یہ والا نتیجہ ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح سے دیکھیے, صرف ہم غصے کے صرف آپ کو نقصانات بتاتے جا رہے ہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اس طرح سے اگر مثلا کاروبار کے اندر نقصان ہوتا ہے, بد مزاج جو دکاندار ہیں وہ اپنے گاہکوں کے ساتھ لڑائی بھی کر رہے ہوتے ہیں, بد زبانی کر رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ایک دفعہ بھی کسی کے ساتھ بد زبانی یا کوئی جس طرح سے ہو جائے بد مزاجی, وہ گاہک پھر اس کے بعد کبھی نہیں آئے گا, نہ کسی اور کو اس جگہ پہ آنے دے گا. تو میں خود بھی ایک ایسے ہی دکاندار سے واقف ہوں. بچپن کی مجھے اپنی یادیں, ہمارے محلے میں مثلا ایک دکاندار ہوا کرتے تھے, تو وہ گاہکوں مثلا گاہک کی تو عادت ہوتی ہے یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ, ایک کے بعد دوسری چیز جو ہے, پھر اس میں سے کوئی چیز پسند کرتا تو وہ کہتا تھا میاں لینا ہے لو ورنہ جاؤ, یہ ان کے تقریباً تکیہ کلام بنا ہوا تھا. اس کے بعد ظاہر ہے وہ کبھی وہاں آتا ہی نہیں تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس شخص نے پتہ نہیں کتنی دکانیں الگ الگ طرح کر کے اور الگ الگ جگہوں پہ کھولی, اور ہر کاروبار اس کا متاثر ہوا اور وہ کبھی اس کی دکان نہیں چل سکی. बाद में इंतकाल हो गया उनका, लेकिन बहरहाल ये कि ये अपनी आंखों से एक चीज देखी हुई। तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले, मसलन अगर वो वही जाहिर शख्सियत में गुस्सा था तो वो अपने दुकान में ग्राहकों के ऊपर भी कभी कभार निकालते थे इस अंदाज से, तो वो ग्राहक भी आना उनके पास बंद हो जाते थे। अच्छा, इसी तरीके से मसलन मालिकान हैं, मसलन इदारे चला रहे हैं और कंपनीज चला रहे हैं, अपना कोई कारोबार चला रहे हैं, वो अगर बदमिजाज हो तो उनके साथ क्या होता है, वो बार बार गुस्सा कर रहे हैं, तो उनके अच्छे कारिंदे, अच्छे कारकुनान, अच्छे जो एम्प्लॉयज हैं उनसे वो महरूम हो जाते हैं, क्योंकि वो छोड़ के जाने लगते हैं। जाहिर है एक आदमी कब तक वो चीज़ बर्दाश्त करेगा, वो एक दफा फट पड़ता है उनके ऊपर और जाहिर है उसका नतीजा ये होता है कि वो उस बेचारे को भी वहां से निकाला जाता है। तो क्या होता है कि इसके नतीजे में यानी वो मालिक जो है एक अच्छे कारकुन और अच्छे कारिंदे से हाथ को धो बैठता है। तो अपने गुस्से को कंट्रोल इंसान करे और देखे कि उसमें उसका कितना जो नुकसान हो रहा है। अच्छा, इसके नतीजे में कभी कभार क्या होता है कि जनाब मामला कभी आगे बढ़ता है, लड़ाई मार कुटाई तक भी नौबत आ जाती है, और कभी कभी इस कदर आगे बढ़ जाता है मामला के माशरे में जितने भी आपको कत्ल वगैरह नजर आते हैं वो सब गुस्से ही के नतीजे में होते हैं। यानी ऐसा तो नहीं कि कोई बिल्कुल कूल एंड काम बैठा हुआ है और जनाब वो किसी को उठाए और पिस्तौल या खंजर निकाल के कत्ल कर दे, ऐसा तो नहीं होता। हमेशा पहले गुस्सा आता है शदीद, फिर उसके बाद होता है। अच्छा, इसके मुकाबले में बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो गुसीले हैं, वो जो एम्प्लॉय होते हैं यानी मुलाजिम होते हैं किसी जगह, उनके साथ क्या होता है, अपने गुस्से की वजह से वो बार बार निकाले जा रहे होते हैं। यानी वो गुस्सा कर रहे हैं, लोगों पर गुस्सा कर रहे हैं, अपने मालिक के साथ ही बदजबानी करने लगते हैं, तो नतीजतन ये वो भी वहां से निकाले जाते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है कि उनका अपना खानदान मुतासिर होता है, माशी परेशानियों का शिकार हो जाता है, और तो बहरहाल ये सब चीजें बड़े नुकसान का बाइस बनती हैं। आपने देखा कि सिर्फ एक गुस्से के पैकेज तले कितनी सारी चीजें वो सब इसके अंदर शामिल हो जाती है, नुकसान दर नुकसान नजर आता है। अच्छा, ये तो थे वैसे नुकसानात। अच्छा, कुछ नुकसानात जिस्मानी भी होते हैं, यानी खुद गुस्सा करने वाले उनके ऊपर जिस्मानी नुकसानात होते हैं, और जिन पर वो अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं उनके ऊपर भी जिस्मानी नुकसानात होते हैं। बहुत सी इसमें तहकीकात हुई हैं और कहा जाता है कि एक मिनट का गुस्सा 4 से 5 मिनट तक आपकी कुव्वत मुदाफियत या इम्यून सिस्टम को बहुत कमजोर कर देता है। एक मिनट का गुस्सा 4 से 5 मिनट तक, और बहुत से लोगों के गुस्से के दौरान ये बहुत तवील होते हैं, तो आप सोचेंगे इम्यून सिस्टम उनका कितना कमजोर हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही आपको गुस्सा आता है आपके जिस्म से कुछ हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं, मसलन एड्रिनलिन एक हार्मोन है, कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, नॉर एड्रिनलिन एक हार्मोन है, लेकिन इनसे होता क्या है, फिर मसलन ब्लड प्रेशर जो है वो आप खुद देखते हैं, जब आपको गुस्सा आता है आप अपना ब्लड प्रेशर उसी वक्त चेक करें, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, दिल आपका जोर जोर से धड़क रहा होता है, टैकीकार्डिया, जिस आपके दिल को बड़ा एफर्ट करनी पड़ रही होती है, सांस आपका बहुत तेजी से आने जाने लगता है, आपको पसीना आने लगता है, हॉट फ्लशेज होने लगते हैं, आप उसी वक्त अपने मुंह पे हाथ लगा के देखें, आपका मुंह गर्म आपको महसूस होगा, आपके हाथ कांपने लगेंगे, और जितनी जल्दी जल्दी बार बार आपको गुस्सा आएगा उतना ही आपके जिस्म से स्ट्रेस हॉर्मोन्स, ये जो तीन हार्मोन के मैंने इससे पहले नाम लिए थे, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, ये तीनों हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन्स कहलाते हैं। ये स्ट्रेस की सूरत में इनके जिस्म से ये बार बार अगर निकलते हैं तो इस जिस्म को नुकसान भी पहुंचाते हैं, और बार बार निकलने से क्या होता है, इनकी कुव्वत मुदाफियत कम होती चली जाती है इंसान की। आपने देखा था एक मिनट का से 4 से 5 मिनट तक आपकी कुव्वत मुदाफियत कम होती है फकत एक मिनट के गुस्से से, और बार बार अगर किसी को इस तरह से गुस्सा आ रहा हो तो उसकी कुव्वत मुदाफियत कम होती चली जाती है, उसे इन्फेक्शन के लगने के भी इम्कान होंगे, उसको बुखार भी होगा, और आजकल जो कोविड वगैरह का जो जरसुमा आपके सबको परेशान किए हुए है वो भी इसमें जो है अपने कारनामे दिखाएगा, तो उससे भी अपने आप को बचाना है। अच्छा, अब इतना जितना आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, जितना स्ट्रेस बढ़ेगा, यानी इससे पहले के अभी तक क्या बात हुई कि आपकी कुव्वते मुदाफियत कम होगी तो आप पे जरासीम हमला करेंगे जैसे कोविड और इस तरह की और चीजें, लेकिन जितना स्ट्रेस बढ़ेगा वो आपके अपने दिल के लिए भी नुकसान दे, दिल के लिए नुकसान दे। ऐसा जोर जोर से दिल धड़कता जा रहा है आपका, उससे की वजह से आपके स्टमक पे असर पड़ता है, आपको एसिडिटी, बहुत से लोगों आप खुद गौर करें उनको एसिडिटी होने लगती है। अच्छा, बार बार अगर अगर एसिडिटी हो तो आपके स्टमक की प्रॉब्लम्स, पेट की और प्रॉब्लम्स आपके साथ जो है वो शुरू हो जाती है। तो इस स्ट्रेस से, जब ये स्ट्रेसफुल जो लाइफ स्टाइल है वो भी पेप्टिक अल्सर, जो मेदे के अल्सर वगैरह का कॉज जो है वो होता है। इसी तरह से मसलन बहुत ज्यादा लोगों को हो जाए तो अक्सर माशरे में देखने में भी आता है, इस वक्त ही फिल्मों में नहीं होता बल्कि आम तौर पर जिंदगी में भी होता है कि इतना ज्यादा गुस्सा हो कि दिल का दौरा पड़ गया। बहुत से अपराध ऐसे होते हैं कि जिनको मसलन फालिज हो जाता है, फेशियल पालसी हो जाती है, आपने देखा होगा, या और जो फालिज वगैरह, स्ट्रोक जिसे कहा जाता है, वो हो जाता है लोगों को। तो वो बार बार के गमों गुस्से से ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, उसके नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, जो ऐसे अफराद जो गुसीले ज्यादा होते हैं उनकी आमतौर पर नींद भी इतनी अच्छी नहीं होती, उनको ऐसे अफराद को सही तौर पर नींद भी नहीं आती, सर में दर्द जो है उनके अक्सर हो जाता है। तो जाहिर है कि जब वो हार्मोन सिक्रीट होते हैं इस तरह से, तो इतना ज्यादा इसके अगर सिर्फ, क्योंकि लेकिन वो फिर मेडिकल दर्द बन जाएगा, इस वजह से मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा हूं, लेकिन बहरहाल जिस्म पर बड़े हार्मफुल किस्म के इफेक्ट होने लगती। और यहां तक कि ये भी चीज कही जाती है, और इस पर तहकीक हुई है बाकायदा, इस पर भी अगर आप सर्च करना चाहें, कि ज्यादा गुस्सा करने वाले अफराद जल्दी मर जाते। जिस तरीके से पेटू के लिए कहा जाता है, यानी बहुत ज्यादा खाता हो, जापानी कहावत है कि वो अपने दांतों से अपनी कब्र को खोदता है, तो इसी तरह से गुसीला जो है शख्स है, ये बार बार जल्दी जल्दी गुस्सा करके अपने जल्द कब्र में जाने का सामान कर रहा होता है, बार बार जल्दी जल्दी गुस्सा करके। जिस तरह देखिए, अभी आपने सुना कि एक मिनट का गुस्सा 5 मिनट तक तकरीबन आपकी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहा है, उसी तरह से कहा जाता है एक मिनट की हंसी ये 24 घंटे तक आपके कुव्वत मुदाफियत को तकवियत पहुंचाती। एक मिनट की हंसी, वो तो सिर्फ 5 मिनट तक इम्यून सिस्टम को, यानी अगर इंसान बेहतर है कि इंसान हंसी खुशी रहे, दूसरों को भी हंसी खुशी जीने दे, उसकी अपनी भी जिंदगी बेहतर होगी, दूसरे भी उसकी वजह से उनकी भी जिंदगी तबील होगी, वरना ये खुद भी अपने जब भी जल्दी जाने का सामान करेगा और दूसरे को भी गम गुस्से में मुबतला करके, यही चीजें जब वो जाहिर गुस्सा करेगा और दूसरे को भी गुस्सा आएगा, तो जितने नुकसान अभी तक आपने सुने वो दूसरे को भी उठाने पड़ेंगे। अच्छा, गुस्सा करने वाले के साथ एक और चीज भी होती है, गुस्सा करने वाला अकेला और तन्हा रह जाता, लोग उससे घबराते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं, एक बहुत बड़ा नुकसान ये। और एक और बड़ा नुकसान ये है कि गुस्से में किया जाने वाला हर फैसला गलत होता, उस समय की इसकी भी एक वजह भी आगे चलकर आज या अगली वाली नशिस्त में आई, कैसा क्यों होता है, फैसले गलत क्यों करता है। यानी कहा जाता है कि गुस्सा काबिल तरीन और जहीन तरीन जो शख्स होता है उसको भी सेकंड्स में बेवकूफ बना देता है। और गुस्सा आपकी जो भी आपकी सिफत, हर शख्स के अंदर सिफत हिल्म पाई जाती है, सिफत तवाजो पाई जाती है, सिफात नेक होती, गुस्सा आपकी इन तमाम सिफात को मिनटों के अंदर जाया कर देता है। उस वक्त आप उन सिफात के हामिल नहीं रहते, गुस्से ने आके उसको तबाह बर्बाद कर दिया। अच्छा, ये गुस्सा जो है ये आपके खानदानी रवाबित को तल्ख बना देता, खानदानी आपस में खानदानी रवाबित तल्ख हो जाते हैं, खानदान से इंसान को कितना ज्यादा एक दूसरे से सहारा होता है, अगर इनके रवाबित मजबूत हों, एक दूसरे से कितनी मदद मिलती है, और लड़ाई झगड़े तलखियां अख्तियार करके, कता ताल्लुक करके इंसान अपने उन तमाम फायदों से अपने आप को खो देता है, उनको तो अपना दुश्मन बना लेता है, अपना मुखालिफ बना लेता है। वो जो आपके बालों पर थे रिवायत में यह आया कि जो आपको मजबूत बनाते थे, उन्हीं को आपने अपनी मजबूती और ताकत को खो दिया। क्यों, लोग कबाइल के अंदर रहा करते थे, कबीलों से एक ताकत होती थी कबाइली सिस्टम में पहले जमाने में, बल्कि अरब माशरे के अंदर तो कबीले के साथ ना रहना गोया अपने आप को कत्ल करवा देना था, यानी जो किसी कबीले के अंडर के अंदर नहीं रहता था तो बिल्कुल एक ऐसे एक आम आदमी हो तो उसे कोई भी कत्ल कर सकता था, उसका कोई माल लूट सकता था। तो लेकिन खानदानी रवाबित अगर होते हैं और इस तरह से इंसान अपने आप को मजबूत करता है तो उसकी अहम मौकों के ऊपर उसको मदद मिलती। खानदानी रवाबित ये गुस्सा आपके खराब करवा देता। معاشرے کے اندر کتنے جوان ہیں ہمیں دیکھتے ہیں کہ اینگری ینگ مین بنے گھوم رہے ہیں، بات بات پر غصہ آ رہا ہے، بات بات پر غصے سے پھٹے جا رہے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نقصان پہنچانے والی چیزیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غصے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ غصہ کے وقت دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے لیکن زبان غلط کام کرنا شروع کر دیتی، یعنی وہ زبان اپنی تمام آفات کے ساتھ ایک انگڑائیاں لے کر بیدار ہوتی اور اپنے شخصانے اپنی تمام آفات لے کر اور وہ حملہ آور ہو جاتی جو اس سے پہلے آپ نے سنی. غصے غضب میں انسان اپنی حدود سے تجاوز کر جاتا. دیکھیے یہ تو صرف پروردگار عالم کی ذات گرامی ہے جو حالت غضب میں بھی عدالت کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتی، یعنی البتہ کیفیات اس پر غلبہ ہی نہیں پا سکتی، وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. شیطان نے بھی، علماء فرماتے ہیں، جب بھی عین حالت غضب الہی کے وقت ایک درخواست کی تھی جو قبول کر لی گئی تھی، وقت معلوم کی مہلت دی گئی تھی. ورنہ کسی بھی موقع پر، مثلا آپ کو پتہ ہے کوئی شخص آپ کے اوپر بہت غصہ ہو رہا ہے تو آپ اس سے کبھی کوئی فرمائش کر کے دیکھیں، کبھی کوئی فرمائش پوری کرے گا آپ کی، بلکہ ابھی جائز بات کو بھی نہیں مانے گا. لیکن پروردگار عالم پہ وہ کیفیات غالب نہیں ہوتی، وہ اپنی حدود سے تجاوز بھی نہیں کرتا ہے، وہ خالق دو عالم ہے. تو اس نے عین حالت غضب میں بھی جب شیطان کو راندہ جا رہا تھا اس وقت بھی اس کی درخواست وقت معلوم تک کی مہلت کی قبول کر لی گئی تھی. اور روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ دیکھیے گھر میں غصہ کرنا گویا اس کو ویران کر دینا. ممکن ہے بہت سے گناہ ایسے ہیں دیکھیے کرنے والے، ممکن ہے، میں گناہوں کی خدا نخواستہ تائید نہیں کر رہا ہوں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں ابھی، لیکن مثلا ہو سکتا ہے کسی گھر میں رہنے والے افراد اس قدر ایسے گناہ گار ہوں، مثلا بے حجابی ہوں وہاں پر، مثلا رشوت خور ہوں مرد وہاں کے، لیکن سب اگر ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں تو وہ گھر قائم رہے گا. لیکن اگر کوئی نماز و روزہ بھی کر رہا ہو لیکن غیظ و غضب کا بھی مظاہرہ کر رہا ہو، وہ گھر کی ویرانی کا باعث بن جائے، اس وقت وہ نماز و روزہ بھی کام نہیں آئے گا. تو اس طرح کی چیزیں کچھ ایسی ہیں جس میں بہت اپنے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے انسان کو کہ اس کے کتنے اثرات ہیں. ایک ہی کہا جاتا ہے نا کہ غصے کا مادہ جو ہے وہ آگ سے، شیطان کی خلقت بھی آگ ہی سے ہوئی. اور جب ہی پیغمبر اکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غصہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو کر دیتا ہے. ایلوا ایک وہی کڑوی دوائی ہے، میں نے جس سے پہلے بتایا کہ ساری بھی شہد کی حلاوت و مٹھاس وہ یہ ختم کر کے رکھ دے گا، اسی طرح غصہ ایمان کی حلاوت و مٹھاس کو ختم کرتا. اب عبادات ساری بے لطف ہو جاتی ہیں، اذکار و تلاوت میں بھی وہ مزہ نہیں رہتا، لطف سارا ان کا غارت ہو جاتا ہے، تلاوت یا قرآن کرنے میں بھی وہ روحانیت اور وہ کیف نہیں آ پاتا ہے، نماز شب کے لیے دل راغب نہیں ہوتا ہے، بے لطف اور پھیکی عبادات، ایک بوجھ. فجر کی نماز کبھی شخص شوق سے نہیں پڑھے گا، ایسے لگے گا جیسے کسی گن پوائنٹ پہ نماز پڑھوائی جا رہی. تو بڑے اس کے نقصانات ہیں آپ کی روحانیت کے اوپر ہیں، آپ کی جسمانیت پر ہیں، آپ کے سماجی تعلقات کے اوپر ہیں. اور خوبصورت سے خوبصورت شخص بھی اگر ہے تو اس کی شکل بالکل غصے میں بگڑ جاتی. اس سے پہلے باوقار نظر آ رہا تھا، اب شکل ہی بگڑ گئی. جیسے میں نے کہا انسان سیلفی لے باقاعدہ، وہ شعر ہے نا کہ رات کو شیطان کو خواب میں دیکھا اس کی صورت جناب کی سی تھی. یعنی واقعی اگر اپنی شکل دیکھے تو اس کو شکل اپنی پسند نہیں آئے گی کہ یہ حالت غضب میں میری ایسی شکل ہو گئی. اس سے پہلے بھی میں نے تھوڑا اس سے پہلے ذکر کیا کہ یہاں جو ہے بیٹیوں کو جب غسل دامت ستاتے ہیں تو مائیں تعویذ اور دعا اور عملیات پوچھتی پھرتی، ارے یہ آپ کی بہو بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس پر آپ یہاں رحم کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیے ابھی تو ہم اس لحاظ سے، ورنہ بہت سی بہویں بھی خراب ہوتی ہیں، لیکن ہم ابھی ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. یعنی ان کے لیے بیٹی پر پڑتی ہے تو تعویذ زیادہ آ جاتے ہیں، بہو پر بیٹا ظلم کر رہا ہوتا ہے تو کہتی ہیں ٹھیک ہی تو کر رہا ہے، بہو سے غلطی ہو جائے تو وہی سلوک آپ اس کے لیے پسند کریں جو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتی. بیٹی کھانے میں نمک تیز کر دے تو داماد سے بھی یہی آپ خواہش آپ کی ہوتی ہے نا کہ اسے وہ معاف کر دے. تو بہرحال ساسیں جو ہیں اس لحاظ سے ناراض ہو جاتی ہیں بہو کے ذکر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بہو بھی بہت سی بہوئیں بھی ایسی ہیں کہ وہ بھی مثلا سسرال کی برائیاں آ کر رہی ہوتی ہیں. بلکہ بات بھی کہی جاتی ہے कि सास की और ससुराल की बुराइयों की रिपोर्टिंग उस तरह से कर दी जिस तरह जीओ और एआरवाई की रिपोर्टिंग होती, और मैके की रिपोर्टिंग के वक्त वो पीटीवी बन जाती। तो बहरहाल ये माशरे के अंदर नजर आ रहा होता है, जिस तरह कोरोना के मुताले से बात कही जाती है ना कि कोरोना फकत ददियाल वालों से फैलता है, ननियाल वालों से नहीं फैलता है। तो ये सब चीजें देखिए इस तरह से हैं। अच्छा देखिए, गुस्सा जो है इसकी, अभी तो आपने नुकसानात कितने सुने, गुस्से की कुछ वजूहात भी, जब तक वजूहात को आप दूर नहीं करेंगे तब तक मसला हल नहीं होगा, क्योंकि हम अगला दर्स इस मौजू के ऊपर लेकर जाएंगे कि गुस्से के ऊपर काबू कैसे पाएं, उसका रुख कैसे तब्दील करें, और प्रैक्टिकल चीजें होंगी, कोई ऐसी फलसफियाना टाइप की चीजें नहीं होंगी। तो गुस्से की वजूहात क्या है? देखिए, पहली वजह तो यह है बेजा तवक्कोआत। ये बहुत बड़ा एक, अगर जब भी आप अपने गुस्से की वजूहात का बिल्कुल दयानतदारी से ठंडे दिमाग के साथ जायजा लें, तो ये बात कही जाती है कि गुस्सा जो अफराद करते भी है ना, तो वो देखेंगे 80 से लेकर 90% जितना भी आपने गुस्सा किया होगा उसकी कोई अकली बुनियाद नहीं होती। मसलन मिसाल देता हूं कि किसी बच्चे से कोई टूट जाए आपको फौरन गुस्सा आ जाता है, इस कदर गुस्सा, चीखना चिल्लाना बच्चे के ऊपर। तरबियत औलाद में भी हमने एक बात कही थी कि हम इस तरह से चीख चिल्ला के मुमकिन है कुछ चीजें बचा लें लेकिन बच्चा जाया कर देंगे। तो ये चीखना चिल्लाना, आप खुद सोचें कि क्या वो चीज इतनी अहम थी। मसलन एक गिलास शीशे का टूट गया था जिसमें आप इतने चीखे चिल्लाई, खवातीन आमतौर पर ज्यादा कर रही होती। प्लेट टूट गई, उसके हाथ से फिसल गई, अब आपने चीखना चिल्लाना, गालियां बकना उसको, ये सब शुरू कर दिया। क्या ये काम आपके हाथ से नहीं हो सकता था? क्या माँ बाप के हाथ से कभी कोई चीज नहीं टूटी? तो एक बेबुनियाद गुस्सा है, एक गैर अहम बात पर गुस्सा है। उस चीज की कॉस्ट भी अगर आप निकालें 150 रुपए की, 200-400 रुपए की, वो इतना आप उससे कोई दिवालिया नहीं हो जाते कि वो नुकसान आपके लिए इतना बड़ा नुकसान है कि उसके लिए आप कोई भी दूसरा बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर लें। तो एक गैर अहम बात पे गुस्सा है, एक बेजा तवक्को थी कि इसके हाथ से कभी कोई चीज ना टूटे। नहीं, हमारे हाथ से कितनी दफा हो जाता है मसलन, या बहुत से और जो वजूहात हम करेंगे जिसमें वो बेजा गुस्से की मिसालें हैं। मसलन आप ड्राइव कर रहे हैं और आगे कोई बूढ़ी खातून बेचारी बेचारी जो है वो ड्राइव करती हुई जा रही, बहुत स्लो जा रही, अब आप हॉर्न दे रहे हैं गुस्से से, बुरा भला जो है उनको कह रहे हैं कौन आ गई है बूढ़ी यहाँ पर। और अब देखिए ना, अगर आप अब जरा वैसे सोचिए आप कि अगर आपके पास भी अपनी कोई ऐसी पुरानी गाड़ी होती जिससे ज्यादा तेज नहीं चल सकती थी, और कोई पीछे से आपको बार बार हॉर्न दे रहा होता या आपको गुस्से से बुरा भला कह रहा होता, तो खुद आपको कैसा लगता? यानी रियलिस्टिक तरीके से सोचे आप। या मसलन आपकी अपनी वालिदा, मसलन वो इतनी बूढ़ी अगर कोई होती और वो चला रही होती है, दूसरा उसको इस तरह से हॉर्न दे रहा होता या उनको गुस्से का इजहार कर रहा होता, तो आपको कैसा लगता? या आप खुद ही इतने बूढ़े होते, आपको पता है बुढ़ापे में रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते, अपने आप को उस शख्स की जगह पर आप रखते हुए देखें, तो फिर क्या आपको लगेगा कि गुस्सा आपका बनता है? ये नहीं लगेगा आपको। इसी तरह से मसलन किसी भी सिग्नल पे अक्सर होता है कि लोगों की गाड़ी बंद हो जाती है, अब जो पीछे अब जैसे सिग्नल खुला अब वो आगे चल ही नहीं रहा है, अब क्या है आप उसे हॉर्न दे रहे हैं, गुस्से हो रहे हैं, ये क्या मुसीबत आ गई, उसको बुरा भला कह रहे हैं। अब आप खुद एक, वही मैंने उससे पहले कहा कि उसकी कोई अकली बुनियाद नहीं, मशीन है, खराब हो सकती है, आपकी अपनी भी गाड़ी खराब हो सकती है। खुद को उसकी जगह पे रखे देखें तो आपको कभी आपका गुस्सा आया तो बहुत कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपके साथ कितना ऐसा नहीं होता कि आप कहीं और देख रहे थे और अचानक से किसी चीज से गाड़ी आपकी टकरा जाती, तो गुस्सा बनता नहीं है। यानी अपने ऊपर भी देखें, बाज़ औक़ात तेजी से आप सिग्नल बंद होने वाला है और आप गाड़ी निकालते जा रहे होते हैं, बीच में सिग्नल बंद हो जाता है तो और गाड़ी वाले वो भी बुरा भला आपको कह रहे होते हैं, या जब आप के सामने कोई दूसरा कर रहा होता है तो आप कर रहे होते हैं, जब खुद सोचें कि आप अपने तौर पर भी तो ये सब कुछ कर चुके हैं। तो बड़ी से बड़ी देखिए जंगों की इब्तदा कहा जाता है कि वो भी एक थप्पड़ से हो सकती है। बच्चों की मामूली सी लड़ाइयां अखबारात में आता है कि 10-10 अफराद कतल हो गए। तो बहरहाल ये सब चीजें ऐसी हैं कि इस सब गुस्से की वजह से होता है। और जरा सा मसलन छोटे बच्चों की अगर बड़े उसमें इन्वॉल्व भी ना हो, कहें बच्चों की आगे चलकर उनका वो करवा दे चे जाएगा कि उसमें खुद मुबतला हो जाए और उसके बाद कत्ल वारदात गरी तक नौबत आ जाए, तो हमेशा देखेंगे कि इसकी कोई अकली बुनियाद नहीं। उससे की वजूहात में एक चीज कम ख्वाबी भी है, स्लीपलेसनेस, कम सोना। हमारे इस तरह के लाइफस्टाइल बन गए हैं ज्यादा देर तक जागने के, और कम नींद के साथ मसलन ऑफिस जा रहे हैं, कारोबार पे जा रहे हैं, आदमी इरिटेबल हो रहा है। अच्छा, इसी तरह से मसलन बच्चे हैं, बच्चे भी देर तक जाग रहे हैं, उसके बाद सुबह उनको उठा के चंद घंटों की नींदी के बाद अभी उसकी नींद पूरी नहीं हुई, उठा के उनको जबरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा है, वहां पर भी उसको नींद आ रही है बच्चे को। बच्चे की पुअर स्कूल परफॉर्मेंस यानी उनका वहां पे कारकर्दगी खराब हो रही होती, आप चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं कि अच्छा नहीं पढ़ रहा है। अरे भाई, आपने उसको नींद, आपने अपना लाइफस्टाइल ऐसा कर लिया कि बच्चे को जो है आमतौर पर 8-9-10 घंटों की नींदें भी उनको जो है चाहिए होती हैं, ज्यादा और छोटा बच्चा है तो बाज़ोकात 12 घंटे की भी नींद चाहिए हो सकती है उसको। तो क्या है कि इतनी कम नींद पर उठाकर तो क्या होगा, अब वो बच्चा इरिटेबल होगा, अब वो गुस्सा करेगा, यानी गुस्से के जो ट्रिगरिंग जो फैक्टर्स हैं उनको मद्देनजर रखना चाहिए। बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, उसकी वजह जो है वो बदमिजाजी उस तौर पर नहीं, बल्कि ये कम ख्वाबी की वजह से, सोना नहीं ठीक मिला है उसको, उसकी नींद पूरी नहीं हुई। आप खुद देख लें, कभी आपकी नींद बहुत कम होती है तो आपको अगला दिन आपका एक अजीब बेकैफ सा गुजर रहा होता है, तो एक वजह ये भी है। यानी बहुत से लोगों के जो गुस्से कर रहे होते हैं, आप उनको ये वाला एज देके देखें, जरा पीछे की तरफ जाएं तो मालूम चलेगा कि अरे हाँ, ये तो ये वाली चीज हमारे साथ भी होती तो हमें भी चिड़चिड़ापन आ रहा होता। तो मुमकिन है किसी ऐसी ही किसी वजह से उस बेचारे को गुस्सा आ रहा हो, वो चिड़चिड़ा हुआ हुआ है, तो आप बर्दाश्त करें, सब्र करें इस पर, यानी थोड़ा सा रियलाइज करके देखें तो फिर आपको इतना ज्यादा किसी दूसरे की बात पर गुस्सा नहीं आएगा। देखिए, एक मरतब हुआ था जो वाकया मिलता भी है कि एक बद्दू जाहिल जो है वो मस्जिद नबवी के अंदर आ गया, बल्कि एक रात भी उसने गुजारी, साहबा ने आकर देखा अगले रोज कि वो मस्जिद नबवी के अंदर पेशाब कर रहा है। साहबा यानी शदीद गुस्से से उसको मारने के लिए दौड़े। पैगंबर अकरम खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़रिमु, इसे छोड़ दो, और फिर अपने पास बुलाकर उसको समझाया कि देखो, मस्जिद जिक्र खुदा की जगह है, मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, इबादत की जगह है, यहाँ गंदगी और निजासत फैलाना ममनू है। उसके बाद पैगंबर अकरम ने क्या किया, सिर्फ पानी मंगवाया, पानी से मस्जिद को पाक करवा दिया। जो मुसलमान स्कॉलर एक गुजरे सैयद सुलेमान नदवी, उन्होंने खुतबात मदारिस उसमें एक अंग्रेजी मौरख का कौल नकल किया है इस वाक़े के जिम्मे। वो अंग्रेज मौरख कहता है कि मुसलमानों के पैगंबर की कुव्वत बर्दाश्त, सब्र और अक्ल कामिल का कोई जवाब नहीं। ये बात कहीं और पाई नहीं जा सकती, क्योंकि अगर आप देखें कोई अगर शख्स कोई मुकद्दस मुकाम पर पेशाब कर रहा हो तो हर शख्स गुस्से से पागल हो जाएगा, अकल उसकी कभी कमाल पर नहीं रहेगी, गुस्सा उसे उसकी अकल को कभी अतदाल पर रखेगा ही नहीं। लेकिन मुसलमानों के इस पैगंबर ने, अजीम पैगंबर ने इस मौके पर गुस्सा ना करके अपनी हुस्न तदबीर इख्तियार करके उस शख्स को समझाया। लेकिन सारे जो साहबा थे उसे मारने के लिए दौड़ रहे थे, यानी जाहिर है किसी भी शख्स के हमारे सामने भी होता हमें शदीद गुस्सा आ जाएगा कि शख्स क्या कर रहा है। लेकिन पैगंबर अकरम ने अपने गुस्से का ये आपने देखा कि कैसा उसको कंट्रोल किया, और जो पैगंबर के तो खैर मुकाम इस्मत पर फाइज थे लेकिन उनकी सीरत का एक पहलू हमारे सामने आया। अच्छा, देखिए जिस जमाने में ये नया नया इनकलाब आया था, तो उस जमाने में इनकलाब के बाद पूरी दुनिया से तालिब इल्म वगैरह हौज़ा इल्मिया के अंदर पढ़ने के लिए ईरान के मुख्तलिफ मदारिस का उन्होंने रुख किया था, वहाँ अफ्रीकी ममालिक के तालिब इल्म भी आए थे। अच्छा, अफ्रीकी वो अपनी पूरी जिंदगी अफ्रीका में इसी तरह से गुजारते आए थे, खड़े होकर पेशाब करते थे। अच्छा, जो दीगर तालिब इल्म थे वो जहरा जब बाथरूम जा रहे, खड़े होकर जब आदमी पेशाब करेगा तो हर जगह वो पेशाब पड़ा हुआ, उन्होंने शदीद सबको गुस्सा लड़ाई झगड़े उन्होंने शुरू किए, बल्कि उसके बाद यानी मामला इतना बड़ा कि इमाम खुमैनी तक इस पैगाम को पहुंचाया कि इन अफ्रीकी जो वहां से आ रहे हैं पढ़ने के लिए इनको यहां से निकाल दिया जाए। देखिए इमाम खुमैनी ने क्या फरमाया, नहीं देखो गुस्सा ना करो, इन्हें आराम से समझाओ, इनको तालीमात इस्लामी बताओ। चंद ही दिनों की बात हुई, उनको सिखाया गया कि देखिए चीज नजीस है, इस तरह से है, और चंद ही दिनों में सीख गए। वरना उस वक्त मुसलमान उनको उनके ऊपर गुस्से होते और उनको वहां से निकालते या उनके साथ बदसलूकी मजीद अगर करते तो सब हौजा छोड़कर चले जाते। लेकिन इमाम खुमैनी ने कहा गुस्सा नहीं करो और इनको बिल्कुल आराम से इस्लामी तालीमात सिखाओ और समझाओ। चंद ही दिनों में सीख गए, यानी वो उससे पहले जो जाहिर है कि कोई भी शख्स बाथरूम अगर जा रहा है अपनी किसी हाजत के लिए और वहां सब कुछ गंदगियां पड़ी हुई हैं तो उसको शदीद गुस्सा आएगा, गुस्से में बुरा भला भी कहेगा वो। अच्छा देखिए दीनी तालिब इल्म और उलमा वगैरह को भी गुस्सा आ सकता है। हमारे यहाँ एक बहुत मुत्तकी परहेज़गार आलिम दीन है मौलाना मोहम्मद हुसैन रईसी साहब, उन्होंने खुद अपनी एक कारवान हज कारवान भी ले जाते हैं, ज़ियारत के कारवान भी लेके जाते हैं, तो उसमें खुद ही उन्होंने अपना एक वाक़या सुनाया कि मैं अखलाकी दरूज भी ज़ाहिर है वो देने पड़ते हैं अखलाकियात के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मैं हज कारवान कोई ले जा रहे थे तो उसमें ज़ाहिर है कि हज के देखिए हज में क्या होता है कि मामूलात ज़िंदगी मुतासर होते हैं इंसान के। कहा जाता है ना कि देखिए तीन अफराद ऐसे हैं कि उनमें अगर आपको बेताबी चिड़चिड़ापन नज़र आए, मसलन गुस्से में नज़र आ रहे हैं आपको, तो उन वो माफ़ है उनके ऊपर से, यानी मसलन उनमें एक है मुसाफिर, मुसाफिर आपको जाहिर सफ़र उसके मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो गए। बहुत से लोग तो पहली पहली दफ़ा हज और ज़ियारत के ऊपर जा रहे होते हैं तो हर मामूले ज़िंदगी मुतासर हो गया, उनकी नींदें पूरी नहीं हो रही, उनको खाना मर्जी के मुताबिक नहीं मिल रहा, उनके और चीज़ें जो है मुतासर हो रही हैं, तो मुसाफिर को आप कुछ ना कहें। इसी तरह से मरीज़ जो है वो चिड़चिड़ा हुआ है, बदमिजाजी कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, माफ़ करो उसको। रोज़ेदार है, इसका भी है बेचारा सिगरेट पिया करता था, अब सिगरेट पीने को नहीं मिल रही, नस्वार कहता था वो नहीं मिल रही है, और खाना पीना नहीं मिल रहा है, पूरे साल में मुस्तहब रोजे रखने के लोग आदि नहीं रहे हैं, अब रमजान जब आता है तो एकदम से लोगों के ऊपर एक बोझ पड़ जाता है, तो क्या होता है चिड़चिड़े हो जाते, सोने जागने की टाइमिंग मुतासर हो जाती। हज में भी यही होता है, सोने जागने की टाइमिंग मुतासर है, मर्जी का आराम नहीं मिल रहा है, मर्जी का खाना नहीं मिल रहा है, मर्जी के बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, रूममेट्स बाकायदा इस तरह के होते हैं, अब तो खैर ये तो बहुत एक एक कमरे में चार चार छः छः अफराद होते हैं, लेकिन उनसे भी मिजाज नहीं मिल रहा होता, कोई सिगरेट पी रहा है, दूसरा नहीं पी रहा है, वो नाराज और गुस्से हो रहा है, मिजाज नहीं मिल रहे हैं आपस में, तो बहुत सी चीज़ों पर गुस्सा आता है। और ये तो थोड़ी सी आपको ऐसी तस्वीर दिखा दी गई जो बहुत ही किसी अच्छे होटल की, लेकिन ये क्या जो उससे पहले ज़रा हुआ करते थे तो एक कमरे के अंदर 10-10, 15-15 अफराद भी जो है वो ठहरा करते थे, इतने सारे लोगों जो कि हम मिजाज भी नहीं है तो छोटी छोटी बातों पर आपस में गुस्सा होने लगता है। तो खुद मौलाना मोहम्मद हुसैन रईसी साहब फरमाते हैं कि मैंने गुस्से के खिलाफ भी वहां तकरीरें की कि देखिए गुस्सा ना करें, आपके जिंदगी मामूलात मुतासर हुए हैं, एक दूसरे के को बर्दाश्त करें। कहने उसके बाद अराफात से मुजदलफा और मुजदलफा से मीना की तरफ जब गए तो आपको पता है कि मीना में खेमे कितना लोग क्लोज एक दूसरे के रहते हैं और एक ही जगह के ऊपर इतने ज्यादा अफराद मौजूद होते हैं तो आपको बहुत वहां तो करवट लेने की भी जगह नहीं होती, यहाँ तक कि ये सब भी उठा के फेंक दिए जाते हैं, एक तरफ रख दिए जाते हैं, क्योंकि एक आदमी के लिए इतनी बड़ी जगह नहीं होती जितनी आपको नजर आ रही है, तो बहुत वहां तो अगर करवट भी अगर लेनी होती है मीना के खेमों में तो एक दूसरे से पूछना पड़ता है कि भाई अब मैं करवट लेने वाला हूं। तो मौलाना मोहतरम कह रहे हैं कि जब मैं खुद खेमे के अंदर पहुंचा तो सब लोग लेटे हुए थे, जाहिर है आलिम पहले से तो कह लेंगे मुझे कोई गुस्सा आने लगा कि मेरे लेटने की कहीं जगह नहीं थी, खड़ा खड़ा मसलन में फिर रहा। तो बासोपत खुद किसी आलिम दीन को भी गुस्सा आ सकता है, कह रहे फिर मैंने रियलाइज किया करे मैं तो इसी मौजू पर अभी तकरीर करके आ रहा हूं। तो देखिए बहुत से इस तरह से चीजें होती, बहुत से लोग गलत मशवरे भी दे देते। एक साहब थे वो बेचारे उनके घर वाले शादी नहीं कर रहे थे उनकी उस नौजवान की, तो किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि तुम ना खूब गुस्सा करो घर जाकर, गुस्सा जब तुम करोगे तो घर वाले मजबूर होकर तुम्हारी शादी कर देंगे। उसने अपने दोस्त को बाद में फोन किया, तो दोस्त ने कहा कि तुमने भाई वो गुस्सा नहीं किया घर में? कहा भाई गुस्सा ही किया था, घर वालों ने गुस्से की वजह निकाल दिया, मैं मस्जिद में बैठा हुआ तुमसे तुमको फोन कर रहा हूँ। तो देखिए ये सब चीजें इस किस्म की हैं कि आदमी अपने आप को देखे कि उसे कभी आगे चल कर हम इस बात को जिक्र करेंगे गुस्सा कब करना चाहिए और पर सही टाइम उसका क्या है। अच्छा गुस्सा जो होता है भी उसकी कोई वजूहात भी बयान कर रहे थे। बहुत से माहिरीन कहते हैं कि पानी कम पीने से भी गुस्सा जो है वो बढ़ता है। आमतौर पर देखा गया कि वो अफराद कि जो कि पानी कम पीते हैं उनके अंदर गुस्सा ज्यादा होता है, या मसलन जो वर्जिश करने के इतने आदी नहीं होते। बच्चों भी आजकल ये हो गया है, वालदैन उनके फिजिकल उनकी एक्सरसाइज की तरफ कोई तवज्जो नहीं है कि उनको शाम के वक्त पार्क लेकर जाएं, उनको बाहर लेकर जाएं जहां वो अपनी एनर्जी को निकाले। बच्चे बस बैठे हर वक्त मोबाइल फोन, हर वक्त मोबाइल फोन या टीवी इसके ऊपर लगाया हुआ है। वालदैन भी इत्मीनान हो जाता है कि चलो ये बैठा हुआ घर में हमारे सामने ही है और कहीं इधर उधर आ जा नहीं रहे, तो ये खुद एक बहुत बड़ा एक ऐसी चीज है। इसमें भी माहिरीन कहते हैं वर्जिश ना करना, कि वो पॉजिटिव जगह अपनी एनर्जी को निकाल लिया। इसी तरीके से जो वो अफराद हैं जो मसलन घर में इसी तरह से हैं, वो मर्द हजरात भी अगर वर्जिश नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ मर्द या खवातीन, तो वर्जिश ना करने से भी गुस्से के अंदर एक इजाफा होता है। पॉजिटिव जब हम अभी जब हम उसकी के गुस्से पर काबू पाने के जब तरीके बयान करेंगे तो उसमें कौन कौन सी फिजिकल एक्सरसाइज ऐसी हैं कि जो रोजाना अगर इंसान करे तो उसका गुस्सा कम होता चला जाता है। वो आगे चलकर आज तो नहीं लेकिन जो नेक्स्ट हमारी गुफ्तगू होगी उसके अंदर आएगा। लेकिन इन तमाम चीजों से आपको वाकिफ होना चाहिए कि जब हम जब जा रहे ट्रीटमेंट उसका उस लिहाज से बताएंगे कि गुस्से को कम कैसे करें, तो ये सब चीजों को सुनकर आप उस तरफ जब जाएंगे तो आप उस इलाज को करने के लिए को दिमागी तौर पर कबूल करेंगे। एक और बड़ी वजह जिससे इंसान गुस्सा करता है वो है मीडिया पर दिखाया जाने वाला गुस्सा और वायलेंस वगैरह जो तशद्दुद दिखाया जाता है, इससे भी इंसान गुस्सा सीखता है। देखिए बच्चे और जवान आजकल जो वालदैन के साथ बड़े जबान चला रहे होते हैं, उनको कसरत के साथ औलाद जो है वालदैन के साथ चीखती चिल्लाती और गुस्सा करती ड्रामों में नजर आ रही। बीवियां शौहरों के ऊपर चीखती चिल्लाती नजर आ रही। ये जितने भी सोशल मौजूदात के ऊपर जितने भी आप ड्रामे देखते हैं उसमें देखें किस कदर उसके अंदर इंसान एक दूसरे के ऊपर चीख चिल्ला रहा होता है। वही अच्छा क्या होता है ये जो बैठे घंटों के लिए ड्रामे खवातीन भी देख रही हैं और मर्द हजरात और ये बच्चे वगैरह भी देख रहे हैं, ये सब चीजें सीख रहे हैं इससे। ये जो लड़की अभी देख रही है ये चीजें सीख रही है किस तरह शौहर के ऊपर चीखा जाता, या लड़का सीख रहा है कि बीवी पे ऐसे चीखा जाता, वालदैन पे ऐसे चीखा जाता है। आपस में अगर आपस में एहतराम दिखाया जाए, मिसाली घराने दिखाए जाए, हमारे अच्छे ड्रामे तो होते ही नहीं ना, सिर्फ बुराई के पहलुओं को सिर्फ उजागर करने वाले ड्रामे। कहते हैं भाई देखिए ये तो माशरे के अंदर चीजें हो रही ना तो सोचा से हम वही तो चीज पेश कर रहे हैं। अरे भाई माशरे के अंदर जो अच्छी अच्छाई और नेकी वाली चीजें होती हैं वो भी तो लोगों को दिखाओ और उससे भी ताकि लोग उसको देख के उसका असर कबूल करें। देखिए असलन कहा जाता है कि जो गुस्सा है ना असल में बेबसी का एक रद्द अमल है। हमारे बहुत से बुजुर्ग भी जो बहुत शदीद गुस्सा कर रहे होते हैं, कहा जाता है ना कि गुस्सा एक धुंध की माने थे, इसमें आगे कुछ नहीं नजर आ रहा होता आपको, जैसे धुंध में आगे नहीं नजर आता। गुस्से को आमतौर पर जो प्रेशर कुकर जो होता है खाने पकाने के लिए उससे भी तशबीह दी जाती है कि देखिए हम गुस्से के दबाव को एक हद तक सिर्फ बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद वो धमाके से फट जाता है, जैसे प्रेशर कुकर धमाके से फट जाता है अक्सर। तो गुस्से को एक हद तक सिर्फ दबाव इंसान बर्दाश्त करता। अच्छा वालिदैन भी जब अपने बच्चे या जवान औलाद के सामने खुद को बेबस महसूस करते हैं तो उनको गुस्सा आता है। अच्छा खुद बुढ़ापा भी एक वजह है वालिदैन जो गुस्सा कर रहे हैं। देखिए जब भी औलाद को उफना करने का हुक्म है, अच्छा आपने देखा होगा वला तकुल लहुम उफ्फिन, कुरान में औलाद के लिए कहा कि देखो वालिदैन के सामने उफना करना। देखिए औलाद का वालिदैन के सामने उफ करेगी, यानी इसका मतलब यह है कि ये बात तकरीबन अंडरस्टूड है अगर चाहे आयत के अंदर नहीं आई है कि वालिदैन से ऐसी बातें कुछ बुढ़ापे की वजह से होंगी कि जिसपे तुमको गुस्सा आएगा। उनको मना नहीं किया, वालिदैन को नहीं कहा कि देखो तुम ऐसी बात ना करना कि जवान औलाद को तुम अगर सब बात कहोगे तो वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, उनको नहीं कहा है, बल्कि औलाद को समझाया है। मालूम था कि ये अपने बुढ़ापे की उम्र पे आकर इस कदर चिड़चिड़ापन इनके अंदर आ जाएगा, इनको समझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि औलाद को समझाओ। मालूम है कि ऐसा कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे कि आपको गुस्सा आएगा, तो औलाद को सिर्फ ये बात कही कि खबरदार तुम उफ तक ना करना। तो बुढ़ापे की भी वजह हो सकती है, कहा जाता ना एक बूढ़े साहब थे, वो डॉक्टर के पास गए, कहा कि डॉक्टर साहब मेरी निगाह कमजोर हो गई, क्या वजह है? डॉक्टर ने कहा बुढ़ापा। कहा डॉक्टर साहब लेकिन मुझे कम सुनाई देने लगा आजकल, इसकी क्या वजह है? कहा इसकी वजह भी बुढ़ापा है। डॉक्टर साहब कमर भी झुक गई है। कहा इसकी भी वजह बुढ़ापा है। डॉक्टर साहब जोड़ों में बड़ा दर्द होने लगा है। कहा बुढ़ापा है। बूढ़े को गुस्सा आ गया। कहा वो जाहिल डॉक्टर, तुझे बुढ़ापे की गर्दान के अलावा भी कुछ आता है या नहीं? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बुजुर्गों, इस गुस्से और गजब की वजह भी बुढ़ापा ही है जो आपको आ रहा है। तो बहरहाल दूसरे लोग इस बात का एहसास करें, दूसरे एहसास करें कि ये बुजुर्ग हो गए हैं, अब इनसे ये चीजें होंगी, बर्दाश्त करें उनकी बात को। आप भी जब इस मरहले पर पहुंचेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, सिवाय इसके कि आपने ये दर्स सुन रखा हो जब ये और अगला वाला, कि जिसमें आपको इस बात का एहसास दिलाया जाएगा कि अपने आप जरा टेम्पर को जरा कूल माइंडेड रहिए और अपने उसको नीचे की तरफ रखें, हर वक्त गर्म ना हो जाए दिमागी तौर पर। तो देखिए जो रिश्ते हैं ना खानदानी रिश्तों में, माफी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है माफ करने को। कहा जाता है जिस तरीके से मशीन को चलाने के लिए देखिए तेल की जरूरत होती, इसी तरह से रिश्तों की जो फ्रिक्शन होती है ना, इसको दूर करने के लिए माफी की जरूरत होती। रिश्तों में भी फ्रिक्शन होती, कितने करीब तरीन रिश्ते हैं उनके अंदर भी ये मुजाहमत और फ्रिक्शन होती, उसमें जो समझे जो उसमें लुब्रिकेशन जो चीज करती है उनकी फ्रिक्शन को कम करती है, वो माफी की जरूरत। माफी, माफ करें, नजरअंदाज करें। जैसे अभी आपने सुना कि घर में गुस्सा करना गोया उसको वीरान करना, यानी साथ रहने वाले जब गुस्सा करने लगे और लड़ने झगड़ने लगे तो फिर ये होता यही है कि फिर वो एक दूसरे से अलग हो जाने में वो आफियत महसूस करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। घर में साथ रहने में कितनी सारे फायदे होते थे, मसलन एक साथ बहुत सारे अफराद रह रहे हैं, माशी कितने फायदे एक दूसरे के साथ होते हैं, जरा बिल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और खर्चा कम होता है और बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं, एक दूसरे से कितनी हेल्प होती है। अगर अलग हो जाते हैं तो आपको सारा बोझ आपके ऊपर आ जाता है, माली बोझ आपके ऊपर आ जाता है। अगर ये सब लोग मिलजुल कर आपस में अच्छे तरीके से रह रहे हो तो कितनी सारी चीजों के अंदर इनको फायदा होता है, वो हम इंशाल्लाह अलग एक मौजू पर गुफ्तगू। लेकिन अगर इतनी ज्यादा लड़ाइयां हो रही हो, इतने गुसीले अफराद वहां पर मौजूद हों, तो ठीक है फिर तो इससे कहीं बेहतर है कि साथ रहने से बेहतर है कि आप अलग अलग हो जाए। फिर ठीक है जाके खूब खर्चे भी अपने बढ़ाएं और ठीक है, फिर ये इस तरफ भी इंसान को जाना पड़ सकता। लेकिन क्या है कि अगर वो सोचता है कि यार अगर सिर्फ मैं अपने आप को, हम लोग अफराद अपने सिर्फ एक मामूली से गुस्से को काबू कर लेते, एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कह दे, तो हम उसी जगह पर अच्छे तरीके से सब साथ रह रहे होते। अच्छा, अभी जो इससे पहले आपने सुना कि जहां गुस्सा करने का मौका होता है वहां नहीं बल्कि हम बेजा गुस्सा करते, और बेजा गुस्सा आमतौर पर होता है जब बेजा तवक्कुआत होती। मसलन बच्चा जो है या नौजवान वो फाइन आर्ट्स की तरफ जाना चाह रहा है, बाप गुस्सा कर रहा है तुम साइंस क्यों नहीं पढ़ रहे, ये बेजा गुस्सा है। यानी अकली एतबार से हाँ उसको समझा सकता है कि देखो जो तुम इस फील्ड किसी भी फील्ड का इंतखाब कर रहे हो इसका इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, यानी अकली तौर पर उसको तमाम चीजों से कायल किया जाए, ऐसे अफराद से मिलवाया जाए। आपसे अगर कायल नहीं हो रहा तो बजाय कि आप ही उसके ऊपर गुस्सा करें, आप ना ऐसे अफराद से मिलाएं जो उसको जो न्यूट्रल टाइप के अफराद हों, वो बताएं कि देखो तुम जिस तरफ जा रहे हो उसका इतना स्कोप नहीं है, ठीक है उन पर गुस्सा कर। अच्छा मसलन बहुत से नौजवानों में होता है किसी खास जगह पर, मसलन कोई वो शादी करना चाह रहा है, मसलन लड़का शादी करना चाह रहा है, अब आप उसके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, बजाहिर कुछ नहीं लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं इससे और बेहतर भी जो है कोई और रिश्ता होगा तो माँ करेंगे अभी हमारा इनसे वो नहीं है, या कोई भी इस तरह से। अब बहुत सी चीजों की बहुत अकली बुनियाद नहीं, कहीं अकली बुनियाद भी होती है वहां, लेकिन उसमें भी गुस्सा करके समझाने से कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल एक अलग पार्टी बन जाएगा, बिल्कुल एक अलग आपसे वो हो जाएगा, आपसे उसका अगर लेकिन ठंडे दिमाग से बैठ के अगर उससे बात करेंगे दलाइल अपने देंगे तो सोच विचार करेगा। लेकिन जहां आपने गुस्सा दिखाया वहां बस वो उसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस आ जाएगी, वो आपको अपना दुश्मन समझेगा और फिर जो भी इकदाम करना है खुद करेगा। हाँ, अगर कोई कहा जाता है ना कि गुस्सा करने की वाकई करना है तो अपने नफ्स पर गुस्सा कीजिए आप, कहें कि गुनाहगार कितनी मरतबा, हजारों लाखों मरतबा तो खुदा की नाफरमानियां कर चुका है, कब सच्ची तौबा करेगा, कब तू गुनाह करना छोड़ेगा। खुद पर गुस्सा कीजिए फिर देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, कब गुस्सा करना है, अहकाम इलाही को पायमाल होते हुए देखकर गुस्सा बनता है। वो रिवायत में मिलता है ना कि तुम लोग मजम्मत की गई है मासूम की तरफ से कि जब खुदा के अहकाम पायमाल होते हैं तो तुम बड़े गुस्सा करने लगते हो, और जब अहकाम खुदाबंदी की बात आती है तो उस वक्त तो गुस्सा नहीं करते हो, लेकिन जब अपने खानदानी रस्म व रिवाज टूटते हैं तो उस वक्त तुम बड़ा गुस्सा करते हो, यानी मफहूम रिवायत का ऐसे बनता है। तो उस मौके पर करें ना जब अहकाम इलाही पायमाल हो रहे हैं, गुनाहों से भरपूर शादियां और तकरीबात हो रही हैं, एक हमारा एक मौजू पे दर्श भी हो चुका है, शबे शादी शबे गुनाह ने कबीरा के नाम से, यानी उसमें तमाम गुनाह कबीरा की लिस्ट बताई गई है जो उसी छतरी के नीचे आते हैं कि जो शादी हो रही है और बड़ी तकरीबात हो रही है, इसके अंदर किस कदर गुनाहों से भरपूर ये शादी होती, तो उसमें उसमें गुस्सा आना चाहिए, मिक्स गैदरिंग को देखकर गुस्सा आना चाहिए, बुजुर्गों को गुस्सा। अलबत्ता ये जरूर है, वो भी हम इस पर कभी अलग से गुफ्तगू करेंगे कि इसके लिए पहले से इकदाम लेने होंगे, ये नहीं कि ऐन उसी वक्त गुस्सा निकाल रहे हो, ऐन उसी वक्त तकरीब शादी के अंदर आपने गुस्सा करना शुरू कर दिया और सबको वो कर रहे, नहीं, पहले से इसके इकदाम कर। देखिए हमारे रसूल अकरम और मोहम्मद वो भी गुस्सा करते थे, लेकिन क्या था, अहकाम इलाही को पायमाल जब होते देखते थे तो गुस्सा करते थे। रिवायत में पैगंबर की हालत बयान हुई है कि कानर रमाना उसेरा आला वजह ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा लगता था कि गोया चेहरे पर अनार निचोड़ दिया गया। मौला अली के मुतालिक मिलता है अलैहिस्सलाम कि शिबहुल मुजहब, गोया गुस्से से अंगारा बन जाते थे, लेकिन क्या था, वो इस्लाम के लिए गुस्सा होता था, वरना आपने देखा कि वो जिसने गुस्ताखी की थी जब पैगा जब मौला उसके जंग में उसके सीने पर चढ़कर बैठ गए थे और उसने गुस्ताखी की थी तो मौला उसके सीने पर से उतर गए थे, हालांकि ये वाली गुस्ताखी कोई करता तो हर्षा गुस्से से पागल हो जाता, लेकिन नहीं। तो गुस्से को बहरहाल अभी कहा जाता है कि सही जगह पर गुस्सा करने का हुनर इंसान सीखे, गुस्से को कहा जाता है गुस्सा तलवार की तरह से, तलवार अपने दिफा में चलाई जाती है, लेकिन इंसान अगर अनाड़ी हो और तलवार को ऐसे इधर उधर घुमा रहा हो उधर तरीके से तो खुद को जख्मी कर लेता। मुझे याद पड़ता जब हमारी एनसीसी की ट्रेनिंग होती थी इंटर वगैरह के दौर में, तो उसमें लाइट मशीन गन भी चलानी सिखाते थे, उसमें ये होता था कि अगर आपने कंधे पर दबाकर उसको नहीं चलाया तो इतना जोर का झटका लगता था कि बहुत से लोगों के कंधे उतर जाते थे, बहुत से तालिबिलों के। तो क्या है, यानी गुस्सा को सही जगह करने का हुनर आना चाहिए, कहा जाता है कि यानी इस तरह से मसलन गुस्सा ऐसी जगह होना चाहिए जहां अकल तायद करे, ऐसी नहीं अभी मैंने अगर कोई किसी मिसालें देनी शुरू करें तो पूरा दर्स इसी में खत्म हो जाएगा। जैसे अभी कहा कि बच्चा कुछ पढ़ना चाह रहा है आप गुस्सा कर रहे हैं कि नहीं तुम ये पढ़ो, वो कहीं रिश्ता करना चाह रहा है और कोई बहुत ज्यादा ऐसी कबाहत भी नहीं है लेकिन आप उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं और शादी नहीं होने दे रहे, तो इन्हें अकल भी तायद करनी चाहिए, किसी अवकला के सामने रखे तो कहेंगे ठीक है इनका इख्तियार है इनको करने दो, और अगर कोई बहुत बड़ी कोई खराबी लाजिम आ रही है वहां पर तो आप उसको दलाइल के साथ कायल करें। अच्छा, इसी तरह से मसलन जब गुस्सा इंसान करे तो वक्त और जगह भी उसका मौजू जगह पे होना चाहिए, मसलन बच्चे को या जवान को उसके दोस्तों के सामने अगर आप गुस्सा करने लगे और डांटने लगे, ये मौजू जगह नहीं थी, इससे मामला और खराब होंगे, कोई फायदा नहीं है गुस्सा करने का, वो बेइज्जती महसूस करेगा अपनी। इसी तरह से मसलन शादी की तकरीब है, उस वक्त आपने गुस्सा करना शुरू कर दिया कि ये क्या मिक्स गैदरिंग हो रही है और ये क्या हो रहा है चीखना चिल्लाना वहां पे, नहीं उस वक्त बदमाशी हो जाएगी, आप उसको पहले से देखेंगे, जाहिर है ये मजहबी अफराद नहीं है या दीन का इस तरह से मालूम नहीं रखते हैं, तो आप पहले से उनको फोन पे बात करें कि उस मौके पर यानी वो मुनासिब जगह नहीं थी वो बदमाशी कर ली, मसलन कोई बच्चा है वो कोई टीवी प्रोग्राम पसंद का प्रोग्राम देख रहा है या खेल रहा है उसी वक्त आपने ट्यूशन टीचर को ही लगा दिया वहां पर, अब देखिए क्या होगा कि इस तरह से जो वो बच्चा जो है वो उस वक्त अगर आप उसके ऊपर गुस्सा करेंगे کہ تم اس وقت پڑھو بیٹھ کے، تو یہ مناسب وقت نہیں تھا، نہ غصہ کرنے کے اعتبار سے تھا، مثلا جو کھیل کا ٹائم ہے اس کے ہو سکتا ہے بچے کے کھیل، شام کو اس کو کھیلنے کا ٹائم، آپ نے اسی وقت لگا دیا اس کو، یہ مناسب بات نہیں. اچھا اسی طرح سے غصہ ضرورت سے ضروری حد تک بس ہو، اس سے زیادہ تجاوز نہ کر، یعنی پروپورشنل ہونا چاہیے. دیکھیے کبھی کبھار گھور کر دیکھنے سے بھی کام چل جاتا ہے، وہ ضرور ہے کہ اب ہم نے اس طرح سے کر لیا ہے کہ اتنا چیخ چلا کے اپنی باتوں کے اثر ہی ختم کر دی. دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان واقعی گھور کے بھی دیکھ لے تو کام ہو جاتا ہے، آنکھیں دکھا کر بھی کام ہو جاتا ہے، ہلکی سی ڈانٹ سے بھی کام چل جاتا ہے. نہ تو بالکل ہی ہومیوپیتھک غصہ ہو، یعنی مقصد ہے کہ اس کا کوئی اثر ہی نہ ہو، اتنا کم ہو کہ فائدہ ہی نہیں ہو رہا، نہ اتنا ہو کہ جناب بس اب سرجری کرنے کی ضرورت پیش آ رہی. یعنی وہ مکھی ہے اس کو آپ اخبار سے بھی مار سکتے ہیں، لیکن آپ پورا ایٹم بم مار رہے ہیں اس کو مارنے کے لیے. تو چھوٹی باتوں پہ یعنی دیکھا جائے کہ یعنی غصہ پروپورشنل، ضرورت سے زیادہ نہ ہو، تجاوز نہ کرے، تو پھر اس کی اثر پذیری ہوتی. اسی طرح سے ہے کہ غصے کے اظہار میں کبھی ہوتا ہے کہ دیکھیں نرم لہجے میں بھی سخت بات کی جا سکتی، اور کبھی سخت لہجے میں نرم بات بھی کی جا سکتی. ایسے الفاظ کہے جا سکتے ہیں سخت لہجے میں نرم الفاظ، وہ ہم آگے چل کر جب غصہ کنٹرول کرنے کے طریقے بیان ہوں گے سو چیز آئے گی. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں غصے کے اندر کہ جن کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ ابھی بیان، ابھی اس سے پہلے جب ہم نے ذکر کیا تھا غصہ ممدو بھی ہوتا ہے، مضموم بھی ہوتا ہے. دیکھیں ممدو کب ہوتا ہے؟ اپنی جان و مال و عزت بچانے کے لیے، اپنے اہل خانہ اور ان کے کو بچانے کے لیے، ان کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے اور ان کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے وطن کے دفاع کے لیے، اس میں اگر کسی کو ظاہر ہے غصہ آ رہا ہے تو یہ پسندیدہ ممدو، یعنی ایسا غصہ جو عقل کے تابع ہے، نفع بخش غصہ ہے، یعنی آپ نے غصے کا رخ صحیح طرف موڑا ہے. یہ نہیں کہ اس غصہ کا رخ موڑ کے اپنے ہی گھر والوں، اپنے ہی مومنین، اپنے ہی بیوی بچوں کے اوپر جو ہے انسان نکال رہا ہوں. تو دیکھیے اپنے گھر میں انسان اتنی زیادہ اکڑ نہ دکھائے، یعنی ہے انشاءاللہ جب ہم آگے چل کے گفتگو آئے گی، بعض اوقات مرد حضرات زیادہ غصہ کرنے، عورتوں کے غصے بھی کر رہی ہوتی ہیں لیکن بہت اتنا اثر نہیں ہوتا اس لحاظ سے، لیکن مرد غصہ اگر کریں تو بہت زیادہ گھر کے اندر گھر کا ماحول اور زیادہ خراب ہوتا ہے. تو وہ اپنی مردانگی کو اور اس لحاظ سے جو اس کم جذباتی مرد کو پروردگار نے بنایا ہے عورتوں کی نسبت، تو وہ اس صفت کو اس طرف نہ لے جائے کہ وہ اتنا ہی جذباتی ان جیسا بننے کی کوشش کرے. تو جسے کہا جاتا ہے نا کہ عام طور پر یعنی گھر میں انسان جو ہے سیلز مین والا جو اخلاق ہے وہ اس کا مظاہرہ نہ کرے. یعنی کہ سیلز مین کیا کرتے ہیں، یعنی ہم تو جو بہت سے سیلز مین بھی ہو سکتا ہے اس بات کو سن رہے ہیں، ان کو شاید نہیں پسند آئے گی بات، لیکن یہ کہ مثلا دیکھا یہ گیا ہے کہ جو باہر بہت زیادہ خوش اخلاق ہیں، گھر آ کے ایک دم سے بڑے ہی نکچڑے اور بدمزاج جو ہے ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے خوش اخلاقی کے سارے خزانے باہر تقسیم کر کے آ جاتے ہیں. اب گھر میں آتے ہیں تو جناب بات بات پر غصہ کر رہے ہیں، یا گاہکوں کی بھی جو اور باتیں ہیں وہ ساری اپنے لوگوں کے اوپر نکال رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیغمبر اکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، سب سے بہتر وہ ہے. بلکہ پیغمبر فرماتے تھے کہ فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا، مجھے یہ بات پسند ہے میں کریم رہوں خواہ مغلوب رہوں، میں بد اخلاق بن کر ان پر غلبہ حاصل کرنا نہیں چاہتا. تو دیکھیے ایک بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ دیندار و متقی افراد عموماً بظاہر اپنی بیویوں سے ذرا دب کر رہتے ہیں، نظر آتے ہیں آپ کو، یعنی وہ زیادہ مداخلت نہیں کرتے ان کے کاموں میں، کہ گھر میں لڑائی اور غصہ وغیرہ نہ ہو، چاہے وہ معاشرے کے اندر بعض اوقات جورو کے غلام وغیرہ کا بھی تانا سننا پڑ سکتا ہے انہیں، لیکن اپنی اسی قوت برداشت کی بنا پر بعض مومنین نے بڑے بڑے مقامات کو بھی حاصل کیا، جو حکایتوں میں ملتا ہے نا کہ ایک بزرگ تھے، ان کی کرامات کا بڑا شہرہ تھا کہ جناب بڑے صاحب کرامات بزرگ ہیں. تو ایک آدمی کو تلاش کرتا ہوا آیا کسی دوسرے شہر سے، ان کے متعلق اس نے یہ سنا تھا کہ جناب وہ اتنے صاحب کرامات ہیں کہ شیر کی سواری کرتے ہیں، شیر کے اوپر سواری کرتے ہیں اور سانپ کا کوڑا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اچھا جب تلاش کرتے کرتے ان کے گھر پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کی بیوی دروازے پر آئی، और पूछा क्या बात है। तो उन्होंने पूछा कि मैं उन बुजुर्ग की तलाश में आया हूँ, वो इस वक्त कहाँ है। कहने लगे वो उनकी बीवी थी। तो कहने लगे अरे उस मक्का रैयार और रियाकार को तुम तलाश करते आए हो, किस चक्कर में तुम पड़ गए। और बड़ी बुराई है कि वो शख्स भी सख्त परेशान हुआ कि मेरे तो सारे शहरों सफर करके जो मैं आया हूँ, सारी मेहनत मेरी पूरी सफर की बेकार हो गई। तो बहरहाल वो बेचारा मायूस होकर जाने लगा तो उसके महल्ले वालों ने उसको रोका। उस बुजुर्ग के महल्ले वाले जो थे कहा कि देखो इस औरत की बातों पर भरोसा ना करो, ये बहुत उसीली और बदमिजाज है। उसी वक्त वो देखा कि वो बुजुर्ग शेर की सवारी और सांप का कोड़ा लिए हुए शेर के ऊपर बैठे हुए आ रहे हैं। अच्छा, मौलाना रूम ने भी शिकायत को लिखा। वो शख्स जाकर उनके कदमों में गिर गया कि हुजूर आपकी बीवी आपके मुतालिक ये राय बयान कर रही थी, मैं तो गुमराह हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बदगुमानी का शिकार हो गया। तो वो बुजुर्ग मुस्कुराए और हंसकर कहा कि उसकी इसी बदमिजाजी और गुसीली तबीयत पर गुस्सा करने के बजाय मैंने सब्र ज़ब्त से काम लिया है, जिसकी वजह से आज मुझे करामत नसीब हुई कि मैं शेर जैसे दरिंदे पर सवारी कर रहा हूँ, सांप जैसे मोजी मेरे हाथ में कमजोर रस्सी की तरह से अल्लाह ने मेरे लिए मुसख्खर कर दिया। ये करामत इसकी बदमिजाजी और गुसीली तबीयत पर सब्र का करने का इनाम। तो अगर मैं ये अपने गुस्से को कंट्रोल ना करता इसकी बातें सुनकर, सब्र ना करता, तो आज ये शेर नर मेरी बेगारी ना कर रहा होता। तो देखिए, इस्लाम के अहकामात पर जो अमल है ये सबसे बड़ी करामत है। ये नहीं कि आपको माशरे के अंदर शेर पर सवार किए हुए लोग इस तरह से मिलेंगे, हर आदमी आप कहेंगे जो भी इस तरह से बर्दाश्त कर रहा है गोया जो है वो बड़ा साहिब करामत है। नहीं, इस्लाम के अहकामात के देखिए कहा जाता है ना कि इस्तेकामत जो है वो हजार करामतों से बेहतर और अफजल होती है, और शरीयत पर जो इस्तेकामत है ये हजार करामतों से अफजल है, यानी इसे बहुत बड़ी चीज है। देख, कहा जाता है ना कि कोई शख्स था वो बहुत अरसे तक एक आलिम की खिदमत में रहा के चलो उनके पास रहते हैं। पहले जमाने में इस तरह से रहा करते थे, जब 10-15 साल बाद कहने लगा मैं जा रहा हूँ आपके पास से क्योंकि मैंने आज तक कभी आपको कोई करामत दिखाते नहीं देखा। तो उन आलिम ने कहा कि अच्छा तुम ये बताओ कि कभी तुमने मुझको शरीयत की खिलाफ वर्जी कभी करते देखा। कहा नहीं, शरीयत की खिलाफ वर्जी तो कभी नहीं करते देखा। तो कहा कि क्या इससे बढ़कर भी कोई करामत हो सकती है कि इंसान 10-15 साल किसी के साथ रहे और कोई शरीयत के खिलाफ अमल करते ना देखे। तो ये मकसद नहीं है कि इसका कि आप कोई तवक्को ये करें कि कोई बहुत बड़ी करामतों का वैसा जहूर होने लगेगा। असल में शरीयत पर अमल और इस्लामी अहकामात के मुताबिक अमल, यही सबसे बड़ी करामत है। तो हमारे आम तौर पर कहा जाता है कि मर्द आरिफ वही है कि जो कि इस किस्म का हो कि जनाब वो कोई करतबबाजी वगैरह जो है वो दिखा रहा हो, तो ये दिमाग में ये बात रहनी चाहिए। तो बहरहाल आपने आज देखा कि गुस्सा और गजब के कितने तबाहकुन नतायज, इसके किस कदर तबाहकुन असरात होते हैं। और अगली नशिस्त में ये तमाम बातें सुनने के बाद अब आपका दिमाग इस तरफ पर माइल हो जाएगा कि कभी ऐसी सूरत हाल हमारे साथ पेश आ जाए कि हमें गुस्सा हो तो हम उस गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। तो ये हमारी इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू का उनवान होगा, लेकिन उस गुफ्तगू से पहले ये गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी थी ताकि आपको इस खतरनाक अखलाकी बुराई, इसके अवाकिब और उसके नतायज से आगाह किया जा सके, ताकि दिमाग इस बात को कबूल करने के लिए तैयार हो जाए कि हमें हर सूरत इस मर्ज से अपना पीछे छोड़ाना है। ये जो हर वक्त गुस्से में रहने की कैफियत है, घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे तबाह बर्बाद हो रहे हैं, खानदानी सिस्टम तबाह बर्बाद हो रहे हैं इस गुस्से और गजब की वजह से। इसके कॉजेस की तरफ भी दिमाग रखिए और इसकी अलामतों और इसके अवाकिब और नतायज की तरफ निगाह रखिए, फिर उसके बाद इसको ख़त्म कैसे करें या इसका रुख कैसे मोड़ें या इसको कम कैसे करें, इसके तरीक़ेकार इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू में हम बयान करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.